नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतस प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानाम निवर्तनम्। ये इस कहानी का अंतिम श्लोक है और आज इस कहानी को हम का अंत करेंगे। इस श्लोक का यही भावार्थ है कि इस 10 प्रश्न के उत्तर हरियस्व पुत्र समझकर ऐसे मार्ग पर चले गए पंथानम अनिवर्तनम, जहां से कोई वापस नहीं आता है।
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमश्च श्रीरूपं सकृजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजे साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिताश्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कन्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द दादर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभान पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषिणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमोष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रषषोडशात्मक सुलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्त की लीला रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण कर रहे हैं। यह भागवत कथा चिंतामणि के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
रामचरित चिंतामणि चारु, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तियसु भग सिंगारु।
भगवान की कथा चिंतामणि के समान है। चिंतामणि का अर्थ जानते हैं? चिंतामणि का अर्थ होता है एक ऐसा मणि, यदि वे हमारे हाथ लग जाए तो हम हमारे मन में जो चिंतन करते हैं वह चिंतन की गई वस्तु को हमारे सामने प्रकट कर दे, उसे चिंतामणि कहा जाता है। हमारे मन में हम जो भी वस्तु सोचे वह हमारे सामने प्रकट हो जाए, वह चिंतामणि है। चिंतामणि वास्तव में चिंतामणि इंद्र के पास है, परंतु वह इंद्र के पास जो चिंतामणि है उस चिंतामणि से धर्म अर्थ और काम प्राप्त हो सकता है, परंतु उससे भी बड़ा चिंतामणि भगवान के भक्तों के पास है, वह भगवान की कथा। भगवान की कथा रूपी चिंतामणि से धर्म अर्थ काम तो मिलते ही है, परंतु साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त होता है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, साक्षात भगवान ही मिल जाते हैं। इंद्र के पास जो चिंतामणि है उसे भगवान नहीं मिलते हैं, परंतु भगवत कथा रूपी चिंतामणि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी चिंतामणि रूपी कथा प्रति बुधवार को हम यहां पर गुरुवार को श्रवण करते हैं। वास्तव में इसके पीछे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिसकी असीम अनुकंपा से हम प्रति गुरुवार को इस भाईंदर में हम सब भक्त एक साथ मिलकर भागवत के कुछ श्लोकों का आस्वादन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के षष्ठम स्कंद के पंचम अध्याय में। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र है, जिस 10,000 पुत्र को हरियस्व कहा जाता है। यह हरियस्व गए थे तपस्या करने के लिए, जब वापस लौटे तो नारद मुनि रास्ते में मिले। नारद मुनि रास्ते में मिलकर कई सारे प्रश्न पूछे। अब तक कितने प्रश्न हुए हैं? 6 प्रश्न। टोटल 10 प्रश्न पूछे हैं नारद मुनि, और 10 प्रश्न सुनने के बाद क्या हुआ आज हम यह श्रवण करेंगे। 6 प्रश्न याद है सबको? प्रश्न ही याद नहीं है तो उत्तर कैसे याद होंगे? पहला प्रश्न क्या था? हाँ, इस पृथ्वी का अंत क्या है? क्या है इस पृथ्वी का अंत? ये पृथ्वी क्या है? यह शरीर। और इस शरीर का अंत कहां पर है? भगवत धाम, भगवान का। इसका डेस्टिनेशन प्लेस भगवत धाम है। जब तक हम भगवत धाम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये शरीर बदलते रहेंगे, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता कभी चींटी कभी हाथी कभी इंद्र भी बन गए, कभी ब्रह्मा भी बन जाते हैं तो कभी नर्क में भी चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। पुनः पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जब तक भगवान के धाम में हम नहीं पहुंचेंगे तब तक यह शरीर बदलना और त्यागना यह होता रहेगा। तो पहला प्रश्न था यह शरीर और इसका डेस्टिनेशन प्लेस से भगवत धाम। दूसरा प्रश्न था तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही राजा है, एक ही पुरुष है, वो कौन है? वो पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तीसरा प्रश्न था बिलम च अदृष्ट निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिस बिल में व्यक्ति चला तो जाता है परंतु वापस नहीं आता है, वो बिल क्या है? वैकुंठ, भगवान का धाम। चौथा प्रश्न था बहु रूपाम स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बदलती है, स्त्री कौन है? बुद्धि। पांचवा प्रश्न था पुमांसम पुंशली पतिम, एक ऐसा पुरुष है जो वेश्या का पति है, वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा है, वह पुरुष कौन है? कौन बता सकता है? एक ऐसा पुरुष है जिसकी पत्नी वेश्या है, जो वेश्या का पति है, एक ऐसा पति है जो व्यभिचारिणी या तो वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा है, पति। इसका उत्तर है कि ऐसा पुरुष जिसके वश में अपनी बुद्धि नहीं है। नहीं नहीं, ये उत्तर ही है, जिसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है वे वेश्या के पति के समान है। यदि कोई वेश्या का पति बन जाता है तो वेश्या की बहुत डिमांड होती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है तो ये बहुत डिमांड करती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वेश्या बाहर नहीं है, बुद्धि में ही बैठी है। तो यदि हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है तो वेश्या के पति के समान हम हैं। और कृष्ण में मति लगेगी तो बहुत दूर की बात है, भजन तो कर ही नहीं पाएंगे, भक्ति तो बहुत दूर रह जाएगी, उल्टा फजीहत में फंस जाएंगे, दुनिया की जंजाल में माया में फंस जाएंगे। इसलिए हमारी इंद्रियों को हमें वश में रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि हे पुत्र, तू कह रहा है कि भगवान विष्णु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यदि भगवान श्री विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो इस दुनिया के सब लोग भगवान विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? यदि शेयर बाजार में कोई अच्छा शेयर मिल रहा है और पता है कि 10 रुपए का जो शेयर है 3 दिन के बाद उसके 100 रुपये होने वाले हैं, तो दुनिया के सब लोग खरीद लेंगे, जितना धन होगा उतना। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, पिताजी मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रताना अदांत गोभी विशतां तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। हे पिताजी, इस संसार में कुछ लोग गृहस्थ धर्म में आसक्त हैं, अपने गृहस्थ को ही व्रत मानकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिया वश में नहीं है। अदांत गोभी, अपनी इंद्रिया वश में न होने के कारण मति न कृष्णे, उनकी मति कृष्ण में नहीं लगती है। हमारी मति भगवान में क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारी इंद्रिया हमारे वश में नहीं है। क्योंकि इस मति को भगवान में लगाने के लिए माला करनी होगी, और माला करने के लिए सुबह उठना होगा, और सुबह तो उठा नहीं जाता है क्योंकि इंद्रिया वश में नहीं है, बुद्धि है। दस दस साल से भक्ति में है, प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत कुछ मंदिर जा रहे हैं, यह पता है भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और रात को यह डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम कल सुबह उठेंगे, अलार्म भी रख देते हैं, लेकिन जैसे सुबह होती है 4-5 बजता है, और ये नींद भी ऐसी है जैसे सुबह होती है वैसे अच्छी नींद आती है, और अलार्म बजते ही आज तो स्नूज सिस्टम निकला है, बंद कर देते हैं तो 5 मिनट के बाद बजेगा, दूसरी बार मन कर देंगे तो और 5 मिनट के बाद बजेगा, तो 5-5 मिनट करते करते 1-2 घंटा हो जाता है। तात्पर्य यह है इंद्रिया वश में नहीं है, ये जो इंद्रिया है भोग भोगना चाहती है, तपस्या करना नहीं चाहती, इंद्रिया स्वाभाविक भोग की ओर मुड़ती है, इसलिए इंद्रिया को हमारी बुद्धि के द्वारा उस भोगों की ओर से नियंत्रण करके भगवान के भजन में लगाना चाहिए। जैसे लोह चुंबक को छोड़ देंगे, जैसे लोहे लोहा यदि आपके पास है, यदि उसे छोड़ देंगे तो लोह चुंबक के प्रति वह खींच जाएगा, वैसे इंद्रिया को यदि ओपन छोड़ दिया जाए, हमारे वश में न रखा जाए, तो वे भोगों की ओर ही जाएगी। ये अभ्यास है इंद्रियों का, इसलिए हमें चाहिए कि इंद्रियों को वश में करना सीखें, क्योंकि इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करेंगे तब तक भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इंद्रियों को वश में। तो तात्पर्य यह है, पांचवा प्रश्न था पुमानसम पुंशलिपतिम, ऐसा एक पुरुष है जो वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा है, वो पुरुष है जिसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है। छठा प्रश्न था नदीम उभयत वाहम, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, ये कौन है? माया। कैसे? हाँ, जन्म माया, एक ओर से जन्म दिलाती है और दूसरे ओर से मार रही है। और सातवां प्रश्न आज आ रहा है आपकी ओर प्रस्तुत कर रहे हैं नारद मुनि, हरियश्व को सातवां प्रश्न पूछे, पंच पंच अद्भुतम गृहम, समझ में आ रहा है संस्कृत? पंच पंच अद्भुतम गृहम, पंच का अर्थ क्या होता है? पांच, और दूसरा पंच का अर्थ क्या होता है? 5 × 5 कितना होता है? 25। तो पंच पंच अर्थात 25 तत्व का एक अद्भुत गृह है। नारद मुनि प्रश्न पूछे कि एक ऐसा घर है जो 25 वस्तु से बना है, प्रभु जी का घर तो आप सोचेंगे सीमेंट से बना है, ईंट है, लाइट है, परंतु ये इस घर की बात नहीं हो रही है, ये ऐसा घर है जो केवल 25 वस्तु से बना है, वह घर कौन सा है? कम से कम झूठ तो बोलिए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, सुबह उठकर कहा, आज ऐसा मूड हुआ है कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो बीरबल ने ऐलान करवाया कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे राजा इनाम देंगे। तो बहुत लोग आए राजा अकबर के पास और आकर कहने लगे, बहुत बहुत झूठ बोले, कहने लगे आज एक हिरण शेर को खा गया। राजा ने कहा इतना बड़ा झूठ नहीं है। फिर एक ने कहा चींटी के गर्भ से हाथी का जन्म हुआ। राजा ने कहा ये भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत लोग झूठ बोले लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। राजा ने कहा ऐसा कोई नहीं है जो सबसे बड़ा झूठ बोल सके। तो अंत में एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि राजा मैं एक जगह से जा रहा था, वहां पर 4 स्त्रियां बैठी थी और एकदम चुप बैठी थी। राजा ने कहा यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 2-4 स्त्रियां बैठकर चुप बैठ ही नहीं सकती है। तो कम से कम झूठ तो झूठ, पंच पंच अद्भुतम गृहम, 25 तत्वों का एक घर है, वह घर कौन सा है? शरीर। पंच विंशति तत्वानाम पुरुषो अद्भुत दर्पणम अध्यात्मम बुद्धस्येह किम असत कर्म भीर भवेत। ये 25 तत्वों का घर और कोई नहीं है, ये 25 तत्वों का घर हमारा यह शरीर ही है। ये शरीर 25 वस्तु को लेकर बना हुआ है। आइए ये 25 वस्तु क्या है हम जानते हैं। सबसे पहले यह शरीर को बनाने की बाहरी शरीर, इस शरीर में भी दो भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं और सूक्ष्म का अर्थ है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो स्थूल शरीर जो है वे 5 तत्वों से बना है जिसे मूल मह तत्व कहते हैं। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप गिनते रहिए, 5 मह तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इस 5 मह तत्व से इसमें 5 कर्मेंद्रिय बनती हैं। शरीर में कर्म इंद्रिया जिससे व्यक्ति कर्म करता है। इस शरीर में 5 वस्तु से हम कर्म करते हैं, केवल हाथ से नहीं, केवल मुंह से नहीं। वे 5 हैं, हाथ, हाथ से कार्य करते हैं, हाथ, पांव, आंख, क्षमा कीजिए, हाथ, पांव, जनेन्द्रिय, गुदा और वाणी। ये 5 चीज से कर्म करते हैं। कितने हुए? 10। और 5 ज्ञानेन्द्रिय है इस शरीर में। 5 ज्ञानेन्द्रिय जिसे ज्ञान होता है वो है आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये 5 के द्वारा हमें ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए हमारी आंख बंद है और कोई यहां पर स्पर्श करता है तो त्वचा से हम जान लेते हैं कि ये किसने स्पर्श किया। आंख से हम जान सकते हैं, कान से जान सकते हैं, नाक से जान सकते हैं। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। कितना हुआ? 15। 5 महत्तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय। अच्छा, इस 5 ज्ञानेन्द्रिय की 5 तन्मात्रा है। वह शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। कितने हुए? 20। ये सब स्थूल है। अब सूक्ष्म गिना रहा हूं, उसमें ऐड कीजिए मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हुए? 23। और आत्मा और परमात्मा। कितने हुए? ये 25 वस्तु से ये एक शरीर बनता है। तो पंच पंच अद्भुत गृहम, ये अद्भुत गृह है जो 25 वस्तु से बना है। तो इस प्रकार से यह अद्भुत घर ब्रह्मा जी ने बनाया है। और ब्रह्मा जी ने भी भगवान से शक्ति लेकर बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनि को बनाया, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान है। परंतु ब्रह्मा जी भी यह ज्ञान भगवान विष्णु से प्राप्त किए हैं, किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सारा ज्ञान, भगवान ने केवल 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जन कैसे करना चाहिए पूरा ज्ञान दे दिया, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, समस्त ज्ञान। और ब्रह्मा जी ने भगवान के उस उपदेश से यह 84 लाख योनि को बनाया। 84 लाख योनि को बनाने में ब्रह्मा जी को 23 तत्व की जरूरत पड़ी। 23 चीज कौन सी? 5 महत्तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, 5 तन्मात्रा और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 23 वस्तु को लेकर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर शरीर बना दिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि बना तो दिया लेकिन ये चल नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान अब इसमें डालिए आत्मा को, अपने अपने कर्म के अनुसार फिट कर दीजिए किसी को गधे में। गधा बना कर रखा था ब्रह्मा जी ने, परंतु उसमें आत्मा नहीं थी इसलिए चल नहीं रहा था। हम देखते हैं जब आत्मा होती है हृदय में तब व्यक्ति चलता है, उठता है, बैठता है। आत्मा जब निकल जाती है तब व्यक्ति चलता नहीं। तब भगवान ने अपने अपने कर्म अनुसार सबको अपनी योनियां दे दी। लेकिन आत्मा आने के बाद भी ये चल नहीं रहा था, चलायमान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए भगवान के पास, भगवान ने कहा अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा वो चल नहीं रहा है। भगवान ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। तब भगवान विष्णु शिरोदक्षाय, विष्णु परमात्मा के रूप में संसार के सभी जीवों में विद्यमान हुए। और जब भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीव के हृदय में आए और वे आत्मा को शक्ति दिए और आत्मा के द्वारा यह शरीर चलने लगा। तो इस प्रकार से परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा जो है इस शरीर को चला रही है। और जब परमात्मा और आत्मा निकल जाते हैं इस शरीर से तब यह शरीर नहीं चलता है। इसलिए कभी आपने सुना होगा कि इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यह सही बात है क्योंकि आत्मा भी जो कार्य कर रही है भगवान से शक्ति लेकर ही कार्य कर रही है, वे स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार से यह 25 तत्वों का अद्भुत गृह है। इस गृह को ठीक से जान लेना चाहिए। यदि इस गृह को ठीक से नहीं जानते हैं तो विवाह करने से और पत्नी बच्चे पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से नारद मुनि बताएं। नारद मुनि 8वां प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वचित हंसम चित्र कथम। नारद मुनि कहते हैं एक ऐसा विचित्र हंस है, हंस तो बहुत सारे हैं परंतु ये विचित्र हंस है, उस हंस के बारे में जानते हैं? हंस की विशेषता आप लोग जानते हो? हंस जो होता है सारग्रही होता है। दूध और पानी को यदि मिला दिया जाए तो हम नहीं पता चला पाएंगे इसमें कितना दूध है कितना पानी है, परंतु दूध और पानी को मिलाकर यदि हंस को दिया जाए तो हंस जो है दूध दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। उसमें यह कला है। ठीक उसी प्रकार ये नारद मुनि कह रहे हैं कि संसार में कुछ लोग हंस के समान है। हंस के समान कैसे हैं? नारद मुनि बहुत ही सुंदर कह रहे हैं, ऐश्वर्यम शास्त्र उत्सृज्य बंध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पदमाज्ञाय किम असत कर्म भीर भवे। इस संसार में भगवत प्राप्ति करने के लिए, इस संसार में जीने के लिए भगवान ने वेद और शास्त्र का निर्माण किया है। तो वेद और शास्त्र में कई सारे उपदेश हैं, भौतिक उपदेश भी हैं, आध्यात्मिक उपदेश भी हैं, कर्म कांड के उपदेश भी हैं और भक्ति मार्ग भी हैं। तो यदि कोई वेदों में रहे हुए कर्म कांड को स्वीकार करते हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जा सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग बलि, किसी का गला काटकर माता को बलि भी चढ़ाते हैं और यह वेदों में लिखा है। तो इस संसार में कुछ लोग वेदों में बहुत बहुत कुछ लिखा है परंतु कर्म कांड वस्तु को ग्रहण करके इसी जन्म में व्यक्ति फंस कर केवल दुख भोगता रहता है। परंतु व्यक्ति को चाहिए कि उस वेदों में से भगवान के धाम में जाने के लिए जो भक्ति पर्यक बातें हैं उस भक्ति पर्यक बातों को ही स्वीकार करे। वेदों में लिखा है यदि कोई पुण्य करता है तो स्वर्ग में जा सकता है, परंतु साथ साथ यह भी लिखा है यदि कोई भजन करता है तो भगवान के धाम में जा सकता है। अब दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो जल्दी सुख चाहते हैं और दूसरे प्रकार के होते हैं जो अल्टीमेट सुख चाहिए। तो जो जल्दी सुख क्षणिक सुख चाहते हैं वे स्वर्ग में जाने के लिए कर्म कांड करते हैं, परंतु कुछ लोग जो होते हैं वे सारग्रही होते हैं, हंस के समान। वेदों में यद्यपि बहुत बहुत उपदेश हैं परंतु गलत गलत उपदेशों को छोड़कर केवल भक्ति विषयों को उपदेश को जो ग्रहण करे उसे हंस, परम हंस कहा जाता है। तो ऐसे परम हंस भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये हंस कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। भगवान के शुद्ध भक्त वेदों में रहे हुए भक्ति को ही स्वीकार करते हैं और दूसरों को वे प्रदान करते हैं। जो वेदों में रहे हुए कर्म कांड को छोड़कर भक्ति को स्वीकार करते हैं उसे हंस कहा जाता है, और कर्म कांड को छोड़कर भक्ति को स्वीकार करके दुनिया के लोग को वे भक्ति प्रदान करते हैं उसे परम हंस कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जो है परमहंस है, इसलिए उसे भक्ति वेदांत कहा जाता है। भक्ति वेदांत कर जानते हैं, वेदों में बहुत बहुत कुछ लिखा है, कर्म कांड इत्यादि, परंतु ये सभी चीज ग्रहण करके सभी वस्तु का, सभी सिद्धांतों का अंत जो भक्ति में करते हैं उसे भक्ति वेद अंत कहा जाता है। वेदों का निचोड़ जो भक्ति के रूप में प्रकट करते हैं उसे भक्ति वेद अंत कहा जाता है, और वो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। एक एक भगवद गीता के सभी श्लोक के सभी तात्पर्य में भक्ति उमड़ रही है प्रभुपाद जी के। आप देखेंगे भगवद गीता को खोलेंगे तो कौन सा भी श्लोक क्यों ना हो, अंत में कृष्ण भावनामृत सबको स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में आने वाले सुखी हो जाते हैं। कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में किसी भी प्रकार का श्लोक क्यों ना हो, उसका अंत प्रभुपाद जी भक्ति में करते हैं। इसे शुद्ध भक्त कहते हैं, इसे परमहंस कहा जाता है। तो नारद मुनि ने कहा परमहंस बनना चाहिए। नारद मुनि का नौवा प्रश्न है, क्षौरप्ययम् स्वयं भ्रमिमि। एक ऐसा चक्र है जिसकी धार वज्र के समान तेज है और जो वज्र के समान तेज है और सबको काट रहा है और वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा चक्र घूम रहा है, इस संसार के सभी लोग मिले और उसे रोकना चाहे फिर भी रोक नहीं सकता। सही, काल चक्र। काल की गति ऐसी है जिसे कोई रोक नहीं सकते। कहे काल चक्रम भ्रमि तीक्ष्णम सर्व निष्कर्ष जगत स्वतंत्र अम्बुद्यस्यह किम असत कर्म भीर भवे। बिल्कुल स्वतंत्र है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इस संसार में यदि धन से समय खरीदा गया होता तो धनी लोग मरते नहीं, परंतु धन से समय को नहीं खरीदा जाता है। इसलिए चाहे वह धनी हो या गरीब हो, चाहे वह 25 माल की इमारत में रहने वाला हो या चाहे वह झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, निश्चित रूप से एक ना एक दिन काल के चक्र के द्वारा उसे मार दिया जाता है। और यह चक्र ऐसा है जिसे कोई नहीं बचता है। सब लोग इस काल के चक्र में फंस कर मरते हैं, और एक बार काल के चक्र में आ गया फिर वो छूट नहीं सकता है। काल का चक्र बहुत मजबूत है। चाणक्य पंडित कहते हैं इस दुनिया का सभी धन लगा दिया जाए इस चक्र को रोकने के लिए, आयुष्य क्षण एको भी न स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा यदि लगा दी जाए कि एक सेकंड के लिए यह काल चक्र रुक जाए फिर भी वह रुक नहीं सकता है। संसार में हम देखते हैं कुछ लोग का जब अंतिम समय होता है, बहुत धनी होते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं हमारे पिताजी को केवल एक घंटा ज्यादा जिला दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। 1 घंटे की कीमत 1 करोड़ देने के लिए तैयार है, परंतु वो मूर्ख अपने जीवन में यह नहीं समझ पाए थे कि 1 घंटे की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उस इतनी कीमत इतने मूल्यवान समय में भजन कर लिया जाए। वास्तव में काल की कोई काल की कीमत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक बार काल बीत गया फिर से वो वापस नहीं आता है। आज की दिन और आज की घड़ी ये जीवन में कभी वापस नहीं आएगी, बस गया। जिसे पानी की धारा, गंगा नदी की धारा अजस अविरत गति से जाती रहती है, जैसे काल बह रहा है पानी की तरह, और कितना तेजी से बह रहा है। 1 साल कैसे खत्म हो जाए पता नहीं चलता है। वैसे जीवन के 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50, 60 और 100 साल मृत्यु। मृत्यु आने में ज्यादा टाइम नहीं है। आप देखो 1 साल कैसे बीत गया, अभी हमारे नजर के सामने है कि पिछले साल हम कहां थे और क्या कर रहे थे। कितना तेज गति से काल का चक्र घूम रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इस काल को समझे, इस काल का काल को व्यर्थ न करें। कुछ लोग टाइम पास करते हैं। हम एक बार ट्रेन से आ रहे थे तो कुछ लोग ताश खेल रहे थे, तो हमने कहा कि क्यों भाई ताश क्यों खेल रहे हो? तो लोग ने कहा हम जुआ नहीं खेल रहे हैं। मैंने कहा जुआ नहीं खेल रहे लेकिन फिर भी ये गलत है, हम टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं। मैंने कहा ये मूर्ख अपने जान नहीं रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम मैं टाइम पास कर रहा हूं, परंतु आप क्या टाइम पास करोगे, टाइम आपको पास कर रहा है। हम क्या टाइम को पास कर सकते हैं, टाइम पास टाइम हमें पास कर रहे हैं। कुछ लोग वीडियो गेम खेलते हैं ट्रेन में, इतने अमूल्य समय को, इतने अमूल्य टाइम को उस गेम खेलने में बिता देते हैं, फिल्म के गाने गाने में बिता देते हैं, ताश खेलने में। समय की वैल्यू को जो समझ गया वे इस जीवन को पार हो गया। वास्तव में हम भजन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय की कीमत को नहीं जान रहे हैं। यदि एक बार समय की कीमत पता चल जाए तो निश्चित रूप से भजन करेंगे। भगवान सबको यह कीमत दिखाते नहीं है। एक बार कहीं फंस जाए व्यक्ति, मृत्यु मौत देख ले, तब व्यक्ति को पता चलेगा कि वास्तव में समय की कीमत क्या है। समय को समझना चाहिए और इस समय का ध्यान रखते हुए इस जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। कुछ लोग बहुत कमाने में पड़े रहते हैं, यहां से कमाऊं वहां से कमाऊं। सुखदेव गोस्वामी भागवत में ऐसे लोगों की उपमा चूहे के साथ देते हैं। जैसे चूहा मस्त होता है बिल खोदने में, चूहा बहुत सुंदर बिल बनाता है, आपने देखा होगा खेत में है या यहां पर। चूहा खेत के एक कॉर्नर से बिल बनाना शुरू करता है तो खेत के दूसरे कॉर्नर से निकलता है, क्योंकि उसके बिल के चार पांच दरवाजे बनाने हैं, क्योंकि उसके बिल में सांप आ जाता है। सांप अपने रहने के लिए कभी बिल नहीं बनाता है, वे चूहे के घर पे ही रहता है। तो चूहा सांप से बचने के लिए अपने घर के बहुत प्लान, यहां से प्लान बनाता है, यहां से बाहर सुरंग बनाऊंगा, यहाँ गेट रखूंगा, यहाँ बालकनी, यहाँ शोकेश रखूंगा, इतना 50 इंच का टीवी लाऊंगा, फ्लैट लाऊंगा, ऊपर रखूंगा ताकि सोते हुए गर्दन न दिखे। लोग ऊपर रखते हैं सराउंड सिस्टम, ये वो, ये प्लान 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 प्लान, यहां से निकलूंगा बाहर, यहां से निकलूंगा। तब तक तो वह सांप उस चूहे के बिल के पास मरा हुआ सा बैठा होता है, बिल्कुल मरा हुआ सा। चूहे को पता नहीं होता है कि सांप बैठा है, ये प्लान बनाने में रहता है महाशय, ये प्लान वो प्लान, यहाँ बालकनी यहाँ घर ये प्लान। तब तब जैसे ही वो प्लान बनाते 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 बाहर आता है तो वह काल रूपी सांप गप करके उस चूहा को खाकर समाप्त, जीवन का सारा मनोरथ समाप्त, जो भी किया था सब कुछ समाप्त, सांप उसे निगल जाता है, फिर सांप ही उस घर पे रहने लगता है। बस यही हालत हमारी है, पूरा जीवन ये घर वो घर, यहाँ पर पैसे ये धन, ये बिजनेस बिजनेस, ये प्लान वो प्लान करते करते कब काल आया, बम फूट गया मर गए, या धरती कंप हो गया गिर गई बिल्डिंग, या नेचुरली डेथ आ गई, हार्ट अटैक हो गया मर गए। हार्ट अटैक से मुझे एक बात याद आ रही है, इस संसार में ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को ही हो रहा है। स्त्रियों को कभी सुना है हार्ट अटैक हुआ? वो दूसरों को हार्ट अटैक कर देती है। कभी पेपर खोल के देखा ये स्त्री को आज हार्ट अटैक हुआ? नहीं, ये प्रभु जी को, ये व्यक्ति को हुआ। वो जानने जैसी बात है, स्त्रियों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता है क्योंकि वो कभी इतना टेंशन लेती नहीं है, देती रहती है। खैर, लेकिन इस काल की गति को समझकर, वास्तव में ये काल कौन है, भगवान गीता में कहते हैं जो मेरा भजन नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मैं ही काल हूं, कालोस्मि लोक क्षय कृतम, लोगों को मारने वाला मैं स्वयं काल हूं। और हे अर्जुन, जो मेरा भजन करते हैं मेरे भक्तों के लिए तो मैं उनका सखा हूं, उसका दास हूं। वही भगवान काल के रूप में सबको निगल जाते हैं, निगल रहे हैं। तो हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर को पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, महाभारत के प्रसंग में आपने देखा होगा, यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, तब जाकर पांडवों को जीव जीवित कर पाए। उनमें से एक प्रश्न यह था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाराज युधिष्ठिर कहे, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। हे यक्ष, अहनी अहनी भूतानी, संसार में सब लोग गच्छन्ति जा रहे, कहां पर? यमालयम, यमराज के दरबार में। छोटे मर रहे, बड़े मर रहे, आजू बाजू वाला, ऊपर नीचे वाला, सब लोग मर रहे हैं, परंतु शेषा स्थावर नहीं चंती, परंतु जो कुछ बचे हैं वे कभी भी अपने मन में नहीं सोचते कि मैं भी उस दिन उस व्यक्ति की तरह एक दिन मर जाऊंगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो वास्तव में हमें हमारी मृत्यु को याद करनी चाहिए। गीता में भगवान कहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चार चीज को रोज देखना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। क्योंकि जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक भजन नहीं कर पाएंगे। तो काल की गति को समझते हुए, काल को व्यर्थ न बिगाड़ते हुए भगवान के भजन में लगाना चाहिए। वास्तव में ये काल जो वर्तमान में चल रहा है, ये काल का सही इस्तेमाल है। भगवान की किताब में यह जो उम्र है, जितना समय भागवत के साथ, भगवान के भक्त के समय भगवान के नाम के साथ बिताएं, ये सही काल का इस्तेमाल है। परंतु भगवान को छोड़कर हम जो काल इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल गलत है, नरक में लेके जाने वाला रास्ता है। इसलिए नित्यम ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान के भजन में, भगवान की कथा कीर्तन में, भगवान के नाम में बिताना चाहिए, भक्तों के संग में। यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता है, रोकते हुए भी नहीं रुकता है, वो है काल। और अंतिम प्रश्न नारद मुनि पूछ रहे हैं कि कथम स्व पितुर आदेशम विद्वांसो विपश्चित अनुरूप विज्ञाय अहो सर्ग करिष्यत। इस प्रकार से आप अपने पिता की आज्ञा को बिना माने, आप अपने पिता की आज्ञा को समझे बिना आप सर्ग करने के लिए, प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए जा रहे हो। तो कुछ हरियशियों ने सोचा होगा पहले, तो बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन समझने के लिए कि हम तो पिताजी की आज्ञा से ही यहां पर आए हैं। और नारद मुनि कह रहे हैं कि पिताजी की आज्ञा को बिना माने और बिना समझे आप ये सृष्टि करना जा रहे हो। तो वास्तव में हरियश्व तो पिता की आज्ञा से ही तपस्या करने के लिए आए थे और पिता की आज्ञा से ही गृहस्थ जीवन स्वीकार करेंगे। परंतु नारद मुनि के कहने के बाद इसे बुद्धि आई कि वास्तविक पिता तो भगवान कृष्ण है। ये पिता तो कभी हमारा पुत्र आगे के जन्म में बनेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको पता होगा महाराज चित्रकेतु के प्रसंग में, एक पिताजी अपने पुत्र में बहुत आसक्त थे, तो उस पुत्र ने अपने पिता को उपदेश दिया, क्या पुत्र पुत्र कर रहे हो, तुम्हें पता है अगले जन्म में तुम हजारों बार मेरे पुत्र बन चुके हो और मुझे पुत्र पुत्र कर रहे हो, इतना आसक्ति रखे हो। संसार में कोई किसी का नहीं है, कभी तुम मेरे पुत्र, कभी मैं आपका पुत्र, ये बंधन क्षणिक है, इसलिए इसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। वास्तविक पिता तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण परम पिता भगवान श्री गोविंद है, कृष्ण है। तो उस पिता की आज्ञा को समझे बिना आप सृष्टि की उत्पत्ति करोगे? तो वास्तव में अब देखिए, दो आज्ञा है यह हरियश्व के सामने, दो आज्ञा, एक अपने पिता दक्ष प्रजापति की, और यहां नारद मुनि के कहने की बात समझ में आई कि भगवान कृष्ण की भी कुछ आज्ञा है। लेकिन दोनों आज्ञा में से अपने पिता, अपने शरीर के पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा को न मानकर भगवान कृष्ण की आज्ञा को हरियश्व समझे, इसीलिए हरियश्व का स्थान श्रीमद् भागवत में आया है। कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे पिता ना कहते हैं, भजन नहीं करना चाहिए, हमारे पिताजी हमें मंदिर में नहीं आने देते हैं, हमारे पिताजी इससे खुश नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे वास्तविक पिता कृष्ण है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसे कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं यह देखना चाहिए। हरियशु ने यह नहीं देखा कि दक्ष प्रजापति हमारे जो ये शरीर के पिता है वे इस बात से प्रसन्न हो गए या नहीं, नहीं, उन्होंने देख लिया कि वास्तविक पिता कृष्ण है, तो कृष्ण की आज्ञा को का पालन करना यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और समझ गए कि कृष्ण की आज्ञा है कि कृष्ण का भजन करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर, सभी प्रकार के छोटे बड़े निजी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में जाना यही सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान का भजन करने के लिए यदि गृहस्थी में फंस गए तो बहुत बड़ी फजीहत में पड़ जाएंगे और भजन नहीं कर पाएंगे। भजन करने के लिए अकेले रहना बहुत आवश्यक है। मैंने दृष्टांत दिया था दत्तात्रेय जी का, भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे, तो 24 गुरु में से एक कन्या पता है ना चोड़ी, तो दो जन भी यदि साथ में रहे तो ठीक से भजन नहीं हो सकता है। भगवान का भजन करने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम बहुत बेस्ट है यदि कोई स्वीकार कर सकता है तो ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार, समझ गए कि ब्रह्मचारी बनकर भजन हम करेंगे। तो एक साथ 10,000 पुत्रों ने कहा नारद मुनि को, ठीक है नारद मुनि, आपकी बात हम सबको समझ में आ गई, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आज से घर पर नहीं जाएंगे। अब आप बताइए कहां पर जाना है, कौन से राधा गिरधारी मंदिर में जाए या राजबिहारी में। तो वहां से 10,000 पुत्र घर पर नहीं गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति व्यवस्थिता राजन, हे राजन इस प्रकार से हरियस्व एक चेतस, यद्यपि हरियस्व 10,000 थे, 10,000 पुत्र थे, लेकिन 10,000 होते हुए भी उनका 10,000 का मन एक था। यहां पर घर पर दो ही लोग होते हैं तो एक का मुंह यहां पर रहता है दूसरे का यहां पर, लेकिन 10,000 होते हुए भी एक चेतस। देख ली बहुत ही सुंदर डिसीजन दक्ष प्रजापति की, 10,000 पुत्र लिए हैं। और हमारे घर पर ठीक से डिसीजन नहीं आता है क्योंकि सबके मन अलग अलग है। वास्तव में ये 10,000 एक साथ होते हुए भी एकांत है। एक चेतस का अर्थ होता है एकांत, और शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है एकांत के बारे में। कहते हैं कि ब्राह्मणानाम सहस्त्रेभ्य, चार वर्ण और आश्रम आप जानते होंगे, चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण। तो कहते ऐसे सहस्त्र सहस्त्र ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों से ब्राह्मण नाम सहस्त्रेभ्य सत्र याजी विशिष्यते, जो यज्ञ करने के करने वाले ब्राह्मण है ये विशेष है। सत्र याजी सहस्त्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है उसे करोड़ों करोड़ों गुना बेस्ट है सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। सर्व वेदांत वित कोटिया, सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले जानने वाले ब्राह्मणों में से, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों में से विष्णु भक्त विशिष्यते, भगवान विष्णु का एक भक्त विशेष है। लेकिन वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य, हजारों हजारों वैष्णवों में से एकांत ये को विशिष्यते, जो एकांत में रहकर भक्ति करता है वो विशेष। भक्ति एकांत में होनी चाहिए, एकांत में यदि भक्ति की जाए तो उसका बहुत फल मिलता है। आप कहोगे एकांत में भक्ति करनी है तो कल तो मैं जंगल में चली जाऊंगी या जंगल में अकेले जाकर भजन करूंगा। प्रभुपाद जी कहते वो मूर्ख है जो एकांत में भक्ति करना चाहते हैं। एकांत में भक्ति करने के लिए जो अकेले वन में चले जाते हैं वे मूर्ख है। वे सोचते हैं कि मैं सबको छोड़कर आया परंतु अपनी 10 पत्नी को साथ में लेकर आया है, और वह 10 पत्नी क्या है, वह 10 पत्नी उनकी इंद्रिया है, शरीर अविद्या जाल उनकी इंद्रिया जो है बड़े बहुत बड़ा जाल है। रूपा जी कहते हैं उस 10 इंद्रियों में जो मन है ये तो महारानी है, तो वो एकांत नहीं है। एकांत का अर्थ है कि भले 1,00,000 लोग साथ में बैठे हो परंतु सबका मन सबका लक्ष्य एक हो उसे एकांत कहते हैं। यहां पर हम 15-20-25 जन साथ में बैठे हैं तो हमारा लक्ष्य यदि एक है तो 25 लोग साथ में होते हुए भी इसे एकांत कहा जाएगा, परंतु दो लोग भी यदि यहां पर बैठे हो और दोनों का लक्ष्य अलग हो तो उसे एकांत नहीं कहा जाएगा। एकांत शब्द ही अपनी परिभाषा बता रहा है, एक अंत, एक में ही जिसका अंत होता हो उसे एकांत कहते हैं। तो यहां पर हरियस्व दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र का एक मन था और 10,000 ने एक ही स्वर में कहा कि ठीक है हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। और प्रयुस्तम परिक्रम्य और नारद मुनि की प्रदक्षिणा किए, नारद मुनि की प्रदक्षिणा करके पंथानम अनिवर्तनम। नारद मुनि की सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन ये 10,000 दक्ष प्रजापति के पुत्र केवल 10 प्रश्न को सुनकर 2 मिनट भी नहीं लगी नारद मुनि की परिक्रमा किए और परिक्रमा करके ऐसे स्थान पर गए जहां से अनिवर्तनम, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता है, और वो स्थान है भगवान का धाम जहां पर परम सुख। इस संसार में हम देखते हैं इस संसार में जो राजा होते हैं चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया उसके अंडर में है, लाखों लाख दास दासियां, गाड़ी बंगले घोड़े नौकर चाकर सब कुछ है, ये राजा बहुत सुखी होते हैं और माना भी जाता है कि ये राजा बहुत सुखी है, उसके पास सब कुछ। परंतु उस राजा से करोड़ों करोड़ों गुना सुखी स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं। इस पृथ्वी पर रहने, इस पृथ्वी का सबसे अच्छे से अच्छा दुख से ज्यादा सुखी, सुखी सुख से ज्यादा सुखी स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी कभी कभी दुख आ जाता है जब स्वर्ग से नीचे भेजा जाता है। टेंशन लेते हैं कि अब कुछ दिन के बाद तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्य मृत्यु लोक के विशंति, अब तो जाना है। तो वो जो स्वर्ग से यहां पर आते हैं, देवताओं भी 3 प्रकार के हैं। कुछ लोग टूरिस्ट के समान है जो पुण्य करके जाते हैं बाद में आ जाते हैं, टूरिस्ट भी ऐसा ही होता है, जो बहुत पुण्य करते हैं वे टूरिस्ट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत पैसा कमाए हो और कोई पूरे वर्ल्ड की टूर करे, अमेरिका चला जाए या सिंगापुर चला जाए घूमने के लिए, लेकिन वे टूरिस्ट तब तक घूमेगा जब तक उसके पास धन होगा, जब उसका बैलेंस समाप्त हो जाएगा घूमकर वापस इंडिया में वही गांव में वही लोकल ट्रेन के चक्कर में। तो पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में टूरिस्ट की समान जाने आने मिलता है। तो एक है टूरिस्ट और एक है भगवान की सेवा में जो लगे हुए हैं नित्य वहां पर रहने वाले हैं। तो टूरिस्टों से भी, टूरिस्ट देवताओं से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुखी है वहां पर जो नित्य रहते हैं ऐसे देवतागण। और कब तक रहते हैं? एक कल्प तक, स्वर्ग में एक कल्प तक, ब्रह्मा जी के एक दिन तक उन्हों उसे रहने दिया जाता है। परंतु उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना सुखी है इंद्र जैसे देवता जो स्वर्ग के राजा है। इंद्र से करोड़ों करोड़ों गुना सुखी है ब्रह्म लोक में रहने वाले ऋषि जो इंद्र से भी ऊपर के लोक में रहते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ब्रह्म लोक में भी व्यक्ति को पूर्ण सुख नहीं है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी उस ब्रह्म लोक से भी पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। आ ब्रह्म भूना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये अर्जुन ब्रह्म लोक तक भी व्यक्ति चला जाए तो उसे पुनर इस पृथ्वी पर आना ही होगा। परंतु उस ब्रह्म लोक से करोड़ों करोड़ों गुना सुख है भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में, जिस सुख की कोई सीमा नहीं है। और वे सुख ऐसा है, नित्य सुख है, एक बार वह सुख मिलने लगता है तो फिर उस सुख में बढ़ावा होता है, कम नहीं होता है। तो ऐसे नित्य सुख की ओर ये दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र चले गए, और एक बार चले गए तो फिर वापस कभी नहीं आए। तो इस प्रकार से 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के, जिसे हरियश्व कहा जाता है, नारद मुनि के इस 10 प्रश्न को सुनकर, नारद मुनि की इस 10 पहेली को सुनकर और समझकर भगवान के धाम की ओर चले गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस छोटी सी कथा के द्वारा यही उपदेश है और यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है, यही आशा है कि हम सब भी जैसे हरियश्व दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जिस रास्ते की ओर चले हैं, उस रास्ते की ओर हम अग्रसर हो और बहुत जल्द हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें और हमारे जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा।